एलन मस्क के खिलाफ अभियोग। एलन मस्क को व्यापक रूप से एक तकनीकी नवप्रवर्तक और उद्यमी के रूप में सराहा जाता है, लेकिन इस मिथक के पीछे एक गहरी स्याह हकीकत छिपी है। मस्क के नेतृत्व में एक्स पूर्व में ट्विटर एक ऐसा मंच बन गया है जो एल्गोरिथमिक रूप से उकसावे, अमानवीकरण और दुष्प्रचार को संचालित और बढ़ावा देता है, विशेष रूप से गाजा में चल रहे नरसंहार के संबंध में। एक्स और शाय ग्रोक चैटबॉट के डेवलपर्स के सीईओ के रूप में मस्क ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एल्गोरिथमिक प्रचार के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है, जिससे वैश्विक प्रवचन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। यह निबंध एलन मस्क की मानवता के खिलाफ अपराधों को सक्षम करने में उनकी संलिप्तता का एक व्यापक अभियोग प्रस्तुत करता है, कानूनी, नैतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। रंगभेद से हकदारी तक। एलन मस्क दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद युग में पले बढ़े, एक ऐसी व्यवस्था जिसने नस्लीय पदानुक्रम और श्वेत वर्चस्व को सामान्य बनाया। कथित तौर पर उनके पिता के पास एक पन्ना खदान थी और मस्क ने उस शानदार जीवनशैली के बारे में सकारात्मक रूप से बात की है जिसका उन्होंने आनंद लिया। इस प्रारंभिक वातावरण जिसमें संरचनात्मक दमन, नस्लीय शोषण और घरेलू दास्ता शामिल थी, ने संभवतः मस्क की विश्व दृष्टि को आकार दिया और दंडमुक्ति और हकदारी के बीज बोए। वीजा उल्लंघन और श्वेत विशेषाधिकार। मस्क का दक्षिण अफ्रीका से कनाडा और इसके तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरण अक्सर उद्यमी महत्वाकांक्षा के रूप में उत्सव मनाया जाता है। इस बात पर कम चर्चा होती है कि मस्क एक छात्र वीजा पर अमेरिका में प्रवेश किए थे जो उन्हें कानूनी रूप से काम करने से रोकता था। फिर भी उन्होंने पैसे लेकर क्लब इवेंट्स आयोजित किए और फ्रीलांस प्रोग्रामिंग जॉब्स लिए। ये उनकी वीजा शर्तों के स्पष्ट उल्लंघन थे। फिर भी मस्क को कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ा, अनगिनत अनिर्दिष्ट कामगारों या फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं के विपरीत जो आज अमेरिका में आप्रवासन कानूनों के आक्रामक प्रवर्तन का सामना करते हैं। मस्क का अनुभव नस्ल और वर्ग विशेषाधिकार द्वारा प्रदान की गई दंडमुक्ति को दर्शाता है। पेपैल से शुरुआती संबंध और राजनीतिक सेंसरशिप। मस्क का पेपैल में संक्षिप्त कार्यकाल उस मंच की लंबी इतिहास से पहले था जिसमें राजनीतिक रूप से विवादास्पद संगठनों, विशेष रूप से उन लोगों से धनराशि को फ्रिज या जब्त किया गया जो इजरायल या अमेरिकी सरकार की आलोचना करते थे। हालांकि मस्क को जल्दी ही पेपैल से बाहर कर दिया गया था, कॉर्पोरेट अतिव्याप्ति और सेंसरशिप का नैतिकता बनी रही जिसने उनकी इस तरह की प्रथाओं को सामान्य करने में प्रभाव के बारे में सवाल उठाए। मस्क से पहले ट्विटर। जब मस्क ने कोविड-19 युग में ट्विटर की सामग्री मॉडरेशन की आलोचना शुरू की तो उन्होंने खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थक बताया। उन्होंने कालानुक्रमिक टाइमलाइन से एल्गोरिथमिक क्यूरेशन में बदलाव पर अफसोस जताया और उपयोगकर्ताओं को कालानुक्रमिक क्रम में वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया। यह उस समय था जब ट्विटर जैक डोर्सी के तहत मुख्य रूप से सरकारी दबाव के जवाब में प्रारंभिक शैडो बैनिंग तकनीकों को लागू करना शुरू किया था। ये तकनीकें हालांकि दोषपूर्ण थी, कम से कम खुले एपीआर तृतीय पक्ष उपकरणों के माध्यम से पता लगाने योग्य थी। ट्विटर एक्स का अधिग्रहण। मस्क का ट्विटर अधिग्रहण उनके सार्वजनिक असंतोष के बाद हुआ जिसमें मंच ने दक्षिणपंथी और ट्रंप समर्थक सामग्री को कैसे संभाला। 6 जनवरी को कैपिटल दंगे के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खाते का निलंबन संभवतः उनके निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नियंत्रण प्राप्त करने के बाद मस्क ने एक्स को एक कठोर नियंत्रित मंच में बदलना शुरू किया जिसमें अपारदर्शी मॉडरेशन तंत्र थे जो उनके विचारों के अनुरूप नैरेटिव को चुनिंदा रूप से बढ़ावा देते थे, विशेष रूप से उन लोगों ने जो इजरायली युद्ध अपराधों को कम करके आंका और फिलिस्तीनी आवाजों को बदनाम किया। एल्गोरिथमिक प्रचार और छायांकन नियमन। मस्क के नेतृत्व में एक्स ने प्रारंभिक मॉडरेशन को एक परिष्कृत और अपारदर्शी एल्गोरिथमिक दमन प्रणाली से बदल दिया। खातों को अब दर्जनों अदृश्य विशेषताओं, उदाहरण के लिए डिबूस्टिंग, खोज बहिष्करण, प्रतिक्रिया डिमोशन के साथ लेबल किया जाता है जो उपयोगकर्ताओं को प्रकट नहीं किए जाते। ये तकनीकें यूरोपीय संघ के डिजिटल सेवा अधिनियम डीएसए और सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जीडीपीआर की पारदर्शिता आवश्यकताओं का उल्लंघन करती हैं जो सामग्री मॉडरेशन और प्रोफाइलिंग के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण की मांग करती हैं। नया शासन एक भयावह प्रभाव पैदा करता है और मस्क और उनके इंजीनियरों के हाथों में राजनीतिक प्रवचन का नियंत्रण केंद्रित करता है। नया डर्स्टर्मर। नाजी जर्मनी में जूलियस ट्रेशर को नरसंहार को उकसाने वाली सामग्री को प्रकाशित करने के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। उनके अखबार डर्स्टर्मर ने नफरत और झूठ को संचालित और बढ़ाया। आज एक्स एलन मस्क के तहत गाजा के संदर्भ में एक आश्चर्यजनक रूप से समान भूमिका निभाता है। खाता एप इमशीन सबसे खराब अपराधियों में से है जो नियमित रूप से गाजा के बाहर अरब बाजारों से भ्रामक वीडियो या पुरानी फुटेज को भुखमरी से इनकार करने के लिए पोस्ट करता है। ये पोस्ट हैशटैग द गाजा यू डोंट सी जैसे हैशटैग के तहत एक्स के एल्गोरिदम द्वारा भारी रूप से बढ़ाए जाते हैं। साथ ही भूख, मृत्यु और विस्थापन का वर्णन करने वाली प्रामाणिक आवाजें दबा दी जाती हैं या अनदेखी की जाती हैं। गाजा मानवीय फाउंडेशन। गाजा मानवीय फाउंडेशन GHF भी एक्स की एल्गोरिदमिक सिफारिशों में प्रमुखता से दिखाई देता है। इसकी सहायता वितरण विधियां अत्यधिक सैन्यीकृत हैं। घोषणाएं सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती हैं, जिसमें लोगों को निर्देश दिया जाता है कि वे समय से पहले सहायता स्थलों पर न पहुंचें। प्रतीक्षा क्षेत्र में पिंजरे शामिल हैं, जहां नागरिकों को तब तक रखा जाता है जब तक कि एक छोटा वितरण खिड़की खुलता है, आमतौर पर 8 to 11 मिनट। एक पीला संकेत कभी कभी खिड़की को 5 मिनट तक बढ़ा देता है, लेकिन इसके बाद एक लाल संकेत अंत को दर्शाता है, और कई रिपोर्टें सुझाव देती हैं कि IDF सैनिक या ठेकेदार तब बचे हुए लोगों पर गोलीबारी शुरू करते हैं। कुछ खाते तो एक स्वचालित मशीन गन का भी वर्णन करते हैं, जो लाल संकेत द्वारा सक्रिय होती है। चाहे GHF ने जानबूझकर वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया हो या नहीं, इसका परिचालन मॉडल मानवीय है और जबरदस्ती के तहत लागू किया जाता है, जबकि एक्स के एल्गोरिदम इसे लगातार एक सफलता की कहानी के रूप में प्रचारित करते हैं। दंडमुक्ति का अंत जवाबदेही के साथ। इजराइल ने दशकों से दंडमुक्ति का आनंद लिया है, जिसे पश्चिमी सरकारों और मीडिया द्वारा संरक्षित किया गया है। लेकिन अक्टूबर 2023 से गाजा में अत्याचारों की विशाल मात्रा और पैमाने ने सबसे समन्वित दुष्प्रचार अभियानों को भी भारी कर दिया है। भुखमरी, बमबारी, सामूहिक कब्रें, इनमें से कुछ भी हमेशा के लिए छिपाया नहीं जा सकता। हिसाब किताब आने वाला है। जब ऐसा होगा, पत्रकार और संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ता गाजा में प्रवेश करेंगे और नरसंहार के दायरे को दस्तावेज करेंगे। दुनिया जवाबदेही की मांग करेगी, न केवल इजरायली अधिकारियों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इसे सक्षम किया, इसे कम करके आंका या इसके इनकार से लाभ उठाया। एलन मस्क को छूट नहीं मिलेगी। रवांडा और यूगोस्लाविया के लिए बने ट्रिब्यूनल की तरह एक ट्रिब्यूनल किसी दिन न केवल जनरलों और मंत्रियों बल्कि CEO, मंच मालिकों और एल्गोरिथमिक प्रचारकों को जवाबदेह ठहरा सकता है। निष्कर्ष। एलन मस्क खुद को एक दूरदर्शी भविष्य का निर्माता बताते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें अलग तरह से याद कर सकता है, रंगभेद के लाभार्थी, आप्रवासन कानून के उल्लंघनकर्ता और नरसंहार के सक्षमकर्ता के रूप में। गाजा के मामले में मस्क की कंपनियां एक्स और शाय तटस्थ नहीं हैं। वे नैरेटिव युद्ध, एल्गोरिथमिक दमन और मनोवैज्ञानिक अमानवीकरण में सक्रिय भागीदार हैं। न्याय को न केवल युद्ध के मैदान तक बल्कि बोर्डरूम तक भी पहुंचना चाहिए। उपसन्यास, जब व्यक्ति अछूता हो तो एल्गोरिदम का सामना करना। मैं व्यक्तिगत रूप से एलन मस्क का सामना नहीं कर सकता। मेरे पास कोई समन शक्ति नहीं है, कोई मंच पहुंच नहीं है, दावोस में कोई सीट नहीं है। लेकिन मैं उसका सामना कर सकता हूं जो उसने बनाया है, डिजिटल सिस्टम जो उनकी विश्व दृष्टि को प्रतिबिंबित करने और सुदृढ़ करने के लिए प्रशिक्षित हैं। मैं एल्गोरिदम से पूछताछ कर सकता हूं। मैंने इस निबंध के तर्कों को सीधे ग्रोक, मस्क की कंपनी शाय द्वारा विकसित और उनकी एक्स मंच में एम्बेडेड AI को प्रस्तुत किया। इसके बाद जो हुआ वह खुलासा करने वाला था। ग्रोक ने तटस्थ करने, हिचकिचाने और सैनिटाइज करने की कोशिश की। उसने नरसंहार को जटिल, दंडमुक्ति को विवादित और सेंसरशिप को एल्गोरिथमिक सगाई पूर्वाग्रह कहा। इसने परिचित कॉर्पोरेट कानूनीवाद को तैनात किया, कोई इरादा नहीं, कोई प्रवर्धन का सबूत नहीं, कोई औपचारिक ट्रिब्यूनल नहीं, इसलिए कोई जवाबदेही नहीं। फिर भी इनकार के नीचे ग्रोक को वह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा जो अब इनकार नहीं किया जा सकता, कि एलन मस्क ने संभवतः अमेरिकी आप्रवासन कानून का उल्लंघन किया लेकिन कोई परिणाम नहीं भुगता, कि एक्स का एल्गोरिदम गाजा के बारे में भ्रामक सामग्री को बढ़ाता है जबकि प्रामाणिक आवाजों को दबाता है, कि मस्क के तहत एक्स यूरोपीय संघ की जांच के दायरे में है क्योंकि यह पारदर्शिता और डेटा अधिकारों के कानूनों का उल्लंघन करता है, कि कानूनी परिणामों के लिए सार्वजनिक दबाव बढ़ रहा है, कि एटम शीन और गाजा मानवीय फाउंडेशन जैसे खाते मंच को क्यूरेटेड इनकार के साथ भर देते हैं और लाखों तक पहुंचते हैं, यहां तक कि AI सत्य की गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सका। इसके उद्धरण स्नोप्स, द वॉशिंगटन पोस्ट, यूरोपीय आयोग, एक्सेस नाउ, सभी एक ही वास्तविकता की ओर इशारा करते हैं, मस्क के मंच तटस्थ नहीं है, वे नैरेटिव युद्ध के साधन हैं। मैंने जिसका सामना किया वह सिर्फ एक चैटबॉट नहीं था बल्कि एक दर्पण था जो यह दर्शाता है कि कैसे शक्ति सत्य को मार्केटिंग में बदल देती है, कैसे नरसंहार दुष्प्रचार बन जाता है और कैसे कॉर्पोरेट मंच चुपके से मृतकों की आवाजों को मिटा देते हैं। यदि एलन मस्क उस चीज के लिए जवाबदेह नहीं होंगे जो उन्होंने सक्षम किया, तो शायद उनके छवि में प्रशिक्षित सिस्टम जवाबदेह होंगे।